मोक्षमार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। कल व्रतों के विषय में जो कुछ पढ़ा था मैंने, उसमें कुछ और यहां पर अपन विचार करते हैं। विरमणम विरति, इसको लेकर के अपन विचार कर रहे थे। तो इसमें ये लिखा था कि चारित्र मोहोपशम क्षयोपशम निमित्तौपशमिकादि चारित्राविर्भावात् विरमणम विरति। कषाय के उपशम क्षयोपशम के निमित्त से जो औपशमिक आदि चारित्र प्रकट होते हैं, उनके प्रकट होने से जो पंच पापों के प्रति विराम लग जाता है, उसका नाम व्रत है। तो फिर ये अंतर व्रत हो गया, अंतरंग व्रत हो गया। बहिरंग व्रत ये है कि जब गुरु के चरणों में जाकर कोई व्रतार्थी संकल्प करता है कि मैं पंच पापों का त्याग करना चाहता हूं, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे प्रत्याख्यान प्रदान कीजिए, यानी उन व्रत पापों का त्याग मुझे आपसे लेना है, आप मुझे वो त्याग प्रदान कीजिए। तो फिर गुरु महाराज उनको कहते हैं कि प्रत्याख्यानम ग्रहण, पांच पापों का त्याग तुम स्वीकार करो। तो ये भी एक प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया के होने पर जो एक विशुद्धि के परिणाम, एक विशेष प्रकार की विशुद्धि अंदर उत्पन्न होती है, उस विशुद्धि से ये चारित्र मोहनी का क्षयोपशम आदि होता है, और फिर जो विराम लग जाता है वो व्रत कहलाता है। तो ये बात पिछली बार अपन ने नहीं ली थी, पर यहां पर ये लेना इस बताना इसलिए आवश्यक था कि इसके बाद वाली पंक्ति में आचार्य कह रहे हैं अभिसंधि कृतो नियम व्रतम, अभिप्राय पूर्वक किया हुआ जो त्याग है उसका नाम व्रत है। तो अब ये चारित्रमोह का क्षयोपशम आदि जो है वो अभिप्राय पूर्वक थोड़ी होता है, ये तो पता ही नहीं चलता कि कब हो जाता है, ये तो अंतरंग परिणाम है। और जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है वो जान सकते हैं कि ये कौन से गुणस्थान में है। तो ये जो अंदर की परिणति होती है गुणस्थान वाली, वो तो अंतरंग होती है, वो तो पता भी नहीं चलती किसी को। लेकिन ये जो बाह्य प्रक्रिया है उसके अंतर्गत अभिप्राय पूर्वक पापों का त्याग करना होता है, उसको त्यागने के लिए भी अंदर एक विशुद्धि की आवश्यकता होती है, लब्धियां होती है उस समय भी। जैसे सम्यक प्राप्ति के समय लब्धि होती है, वैसे ही चारित्र के लिए लब्धियां होती है। और फिर जब वो एकदम तैयार हो जाता है, अंदर से बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो जाता है, तब फिर वहां जाकर के वो व्रत लेता है। और व्रत लेने के बाद जो अंदर ये परिणति होती है, फिर वो घटना होती है। और ये सब अंतर्मुहूर्त में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो काफी समय से ये प्रक्रिया चले, अंतर्मुहूर्त में ये सारी चीजें हो जाती है। व्रत लिए और बिल्कुल तत्काल कायोत्सर्ग किया, और उसी समय अंदर क्षयोपशम हो गया और गुणस्थान भी बदल गया, चौथे से पांचवा हो गया, या फिर चौथे से महाव्रत ले लिया तो फिर सातवा हो गया सीधे। ये ऐसा नियम है कि छठा गुणस्थान नहीं होता है पहले, सप्तम गुणस्थान पहले होता है, फिर सप्तम से अंतर्मुहूर्त बाद वापस फिर नीचे आते हैं छठे में, फिर ऊपर सातवें में जाते हैं, तो ऐसे छठा सातवां चलता रहता है, फिर जीवन भर चलते हैं। तो इसकी बाह्य प्रक्रिया और अंतरंग प्रक्रिया दोनों प्रक्रिया होती है, तब फिर वो व्रती होता है। ये बात यहाँ पर विशेष जानने की थी। अब इसके उपरांत अचौर्य व्रत की पांच भावनाएं बता रहे हैं, और यहाँ पर साधुओं को मुख्य करके बता रहे हैं। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। शून्यागार मतलब सुनसान कोई भवन पड़ा हो, जहां किसी का स्वामित्व अधिक न हो, वहां ठहरने पर चोरी का दोष नहीं लगता, इसलिए ऐसे स्थान पर साधु ठहर सकते हैं। विमोचितावास, और अगार का अर्थ घर ही होता है, पर शून्य हो, जन शून्य हो, और वहां गृहस्थी के परिग्रह आदि कुछ भी ना हो, ऐसे घर पे जाकर के रुक सकते, खाली घर पड़ा है। फिर विमोचित आवास, विमोचित का अर्थ होता है एक विमुक्त और एक विमोचित, दोनों में अंतर है। कृत और कारित में जो अंतर है वही यहां पर भी है। कृत विमुक्त का अर्थ होता है छोड़ दिया, और विमोचित का अर्थ होता है छुड़वाया गया। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, जैसे मान लो समुद्र तट पर तूफान की संभावना है, तो वहां के जो आवास है वो विमोचित आवास हो जाते हैं, सबको खाली करा देते हैं वहां से, और खाली करवा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो जब तक वो खाली करवाया हुआ स्थान खाली पड़ा है, वहां पर साधु को रुकने में चोरी का दोष नहीं लगेगा, ये कह रहे हैं। फिर परोपरोधाकरण, परोपरोधाकरण का अर्थ होता है पर, अगर आप जहां रुक गए फिर वहां पर कोई दूसरा आता है तो उसको उपरोध अकरण, उसको न रोकना। साधु एक जगह रुक गया, वहां पर आकर कोई दूसरे साधु रुक जाते हैं, तो वो साधु उनसे ये ना बोले कि ये हमारी जगह है, आप उधर चले जाओ, यहां मत आओ। ये इसमें अचौर्य व्रत की भावना, क्योंकि ऐसा कहने से क्या होगा कि जगह तो किसी की नहीं है, ना उन साधु की है ना आपकी है, फिर आप कैसे मालिक बन गए? तो बिना दी हुई वस्तु का मालिक बनने से क्या होता है? चोरी का दोष लगता है, इसलिए कहते हैं कि परोपरोधाकरण। फिर भैक्ष्य शुद्धि, भैक्ष्य शुद्धि का अर्थ होता है जो भिक्षावृत्ति बताई है साधु की, उसकी शुद्धि बना करके रखना। अगर शास्त्र में बताए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वो भिक्षा साधु के लिए अनधिकृत हो जाती है, यानी साधु उस भिक्षा को ग्रहण करने योग्य नहीं रहते, और अगर ग्रहण करते हैं तो फिर वो नियम का उल्लंघन करके ग्रहण करने के कारण चोरी में आती है। तो भिक्षा की शुद्धि रखना, भिक्षा शुद्धि के विषय में आगे चल करके एक प्रकरण आएगा, एक मिनट देख लेते हैं कैसी होती है वो भिक्षा शुद्धि। नौवे अध्याय में शुद्धियां दी हुई है राजवार्तिक ग्रंथ में। भिक्षा शुद्धि का अर्थ क्या होता है? परीक्षित उभय प्रचारा, प्रमृष्ट पूर्वा पर स्वांग देश विधाना, जहां पर आप भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं खड़े होकर के, तो अपने पैरों के आसपास भी जीवों का संचार ना हो रहा हो और सामने जो दातार लोग आहार दे रहे हैं उनके पैरों के आसपास भी जीव जंतु ना हो। प्रमृष्ट पूर्वा पर स्वांग देश विधाना, सामने से और पीछे से अपने शरीर पर पिच्छी लगा लेना, ये भिक्षा शुद्धि की बात चल रही है। फिर आचार सूत्रोक्त काल देश प्रकृति प्रतिपत्ति कुशला, और आचार सूत्रों में कहा हुआ जो काल है, जो क्षेत्र है और अपनी प्रकृति है, उसकी जानकारी में जो कुशल है, माने इतनी सब जानकारी रख करके ही आहार लेना है, कोई भी आहार अपने मन से नहीं लेना है, व्यवस्थित लेना है। फिर लाभा लाभ मानाप मान समान मनोवृत्ति, लाभ होने पर अलाभ होने पर भी मन को समान रखना है, रास्ते में आते समय कोई अपमान करे कोई सम्मान करे वहां पर भी तटस्थ रहना। लोक गर्हित कुल परिवर्जन परा, लोक में जो वंश गर्हित है अर्थात प्रशंसा के पात्र नहीं है, उनके परिवारों में आहार नहीं लेना है। चंद्र गतिरिव हीनादिक ग्रह, जैसे चंद्रमा छोटे घर बड़े घर सब जगह प्रकाश करता है, वैसे ही साधु भी सभी घरों में आहार ले सकते हैं, जहां जहां आगम के अनुसार आहार मिल रहा है वहां पर। फिर विशिष्ट उपस्थाना, दीनानाथ दानशाला, विवाह यजन गेहादि परिवर्जन उपलक्षिता। बोले कि दीन जनों के लिए और अनाथों के लिए जो भोजनशाला बनी है वहां पर साधु आहार न ले, और विवाह भोज अगर कहीं पर चल रहा है या फिर कहीं कोई बहुत बड़ा पूजा का अनुष्ठान हो रहा है तो वहां जो भोजन की तैयारी हुई है, पूजा तो होती है अपने समय पर, फिर जो यजमान लोग होते हैं पूजा करने वाले, पंचकल्याणक वगैरह बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, तो उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था होती है वहां पर साधु भोजन न ले। और दीन वृत्ति विगमा, दीन वृत्ति से आहार न ले, दीन वृत्ति का अर्थ होता है यानी चेहरा ऐसा ना हो कि सबको दया आ जाए, कह रहे बेचारे कितना भूखे कितने प्यासे हैं, मतलब ऐसा मुखमंडल बना करके आहार ना ले। फिर प्रासुक आहार ग्रवेशण प्रणिधान, अपना ध्यान इसी में लगा के रखें कि मुझे निर्दोष आहार लेना है, शुद्ध प्रासों का आहार ही मुझे लेना है, उस पर ध्यान रखें। और आगम विहित निरवध्याशन परिप्राप्त प्राण यात्रा फला, आगम में कथित जो निर्दोष भोजन है उसको प्राप्त करके सिर्फ प्राणों की यात्रा जिसका फल है ऐसा अपना क्रम रखना है। तत्प्रतिबद्धा ही चरण संपत्त, इसके बाद आचार्य अकलंक देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में से जो सम्यक चारित्र है उस सम्यक चारित्र बहुत बड़ा रत्न है, बहुत बड़ी संपदा है, वो भिक्षा शुद्धि के साथ गांठ बांध करके चलती है। जब तक भिक्षा शुद्धि रहती है तब तक सम्यक चारित्र रहता है। गुण संपदेव साधु जन सेवा निबंधना, जैसे गुणों की संपदा जो होती है साधुओं की सेवा से जुड़ी होती है, साधुओं की सेवा करो तो गुणों की संपदा प्राप्त होती है, वैसे भिक्षाचर्या शुद्ध रखो तो फिर सम्यक चारित्र बना रहता है, स्थिर रहता है, निर्मल रहता है। सा लाभा लाभयोः सुर सरस विरसयोः सरस विरसयोश्च सम संतोषा सम संतोषात भिक्षेति भाष्यते। इसको भिक्षा क्यों कहते हैं? तो बोलते हैं कि लाभ और अलाभ में, सरस और विरस इनमें समान भाव रखकर संतुष्ट रहते हैं। जो भी मिल रहा है पेट भर रहा है ना, अब वो स्वादिष्ट मिले या फिर ना मिले, पेट भर गया तो खुश रहना है, इसलिए इसको भिक्षा कहते हैं। फिर उदाहरण दे रहे हैं कि यथा सलील सालंकार वर युवती भी उपनीय मान घासो गौर न तदंग गत सौंदर्य निरीक्षण पर तृणमेवाती। जैसे कोई कुमारी है और वो अच्छे सुंदर वस्त्र अलंकार पहन करके आती है, तो जो उसके घर पला हुआ जो जानवर है बैल, वो उसकी सुंदरता को नहीं देखता, उसके हाथ में जो घास है उसको देखता है और घास को ही खाता है। तो बस साधु को भी यहाँ वहाँ अपने चित्त को आकर्षित नहीं करना, यहाँ पर कहीं भी अपनी दृष्टि को वहाँ लगाना नहीं है, आहार को शोध करके ग्रहण करना है। तथा भिक्षुरपि, उसी प्रकार साधु भी न योजना संपदम अवेक्षते, वो कौन से बर्तन में लेकर के कौन से उसमें किस पात्र में लेकर के वो घास को ला रही है या फिर हाथ में पकड़ के ला रही है, वो सब नहीं देखता वो बैल, बल्कि वो घास को ही देख करके उसको खाता है। वैसे भिक्षु भी भिक्षा परिवेशक जन मृदुल ललित रूप वेश विलासावलोकन निरुत्सुक, जो भिक्षा प्रदान करने वाले जो माता बहनें जो भी हैं उनके मृदुल ललित रूप और उनके वेश उनके विलास इनको देखने के प्रति उत्साह रहित होते हैं, उनको कोई उत्साह नहीं होता उनकी उन हलचलों में हलचलियों में। फिर शुष्क द्रवाहार योजना विशेषम चानवेक्षमाण, फिर कभी कोई सूखी वस्तु दे दे तो भी ठीक है। यथागतम अश्नाति, यथा जैसा आगत होता है भोजन वैसा कर लेते हैं। इति गौरी व चारो गोचार, इसलिए गाय जैसा आचरण करने के कारण इसको गोचार अथवा गोचरी वृत्ति कहते हैं। तथा गवेषणा इति च, इसको गवेषणा भी कहते हैं। गवेषणा शब्द जैन दर्शन से आया हुआ है, अभी तो सब जगह विश्व में प्रसिद्ध है, हिंदी भाषी लोग सब गवेषणा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो यहां से आया हुआ है। गाय के जैसी भोजन क्रिया करना। फिर यथा शकटम रत्न भार परिपूर्ण येन केनचित स्नेहेन केनचित स्नेहेन अक्षलेपं कृत्वा अभिलषित देशांतरम वणिक उपनयति तथा मुनिरपि। अब जैसे रत्नों से भरी हुई एक वाहन है कोई, उसको व्यापारी अपने इष्ट स्थान पर ले जाते समय बीच बीच में उसके चक्के में वो औंघन लगाता है, ग्रीस लगाता है, नहीं तो फिर वो गाड़ी आवाज करने लग जाती है, उसके एक्सल से रगड़ करके वो चक्के जो रहते हैं ना वो चैचू करते हैं। तो इसी तरह साधु भी ये तीन रत्नों की गाड़ी मोक्ष नगरी तक ले जाते हैं, तो फिर जब इसमें भोजन नहीं डाला जाता तो फिर पेट के अंदर भूख से चैचू चैचू होती है, तो फिर वो उनको ग्रीस डालने के हिसाब से भोजन दे देते हैं शरीर को। गुण रत्न भरिता, गुणों के गुण रूपी रत्नों से भरी हुई गाड़ी रहती है। तो ऑयलिंग करने के हिसाब से इसमें भोजन दे देते हैं। अभी प्रेत समाधि, अभी वो तो मोक्ष जाने वाली बात तो दूर की बात है, लेकिन जो शुद्धोपयोग रूपी जो डेरा है वहां तक ले जाना है गाड़ी को, तो फिर ये सारी चीजें करनी होती है। फिर ऐसे कभी किसी गृहस्थ के घर आग लग जाती है, तो फिर वो जैसा भी पानी होता है उसके पास उसको डाल करके आग को बुझाता है। उसी प्रकार साधु भी जब पेट में आग लगती है, क्षुधा की आग, तो फिर गृहस्थ के यहाँ जा करके फिर उस क्षुधा रूपी अग्नि को सरस नीरस जो भी आहार है उससे बुझा देते हैं। दात्रीजन बाधे अविना कुशलो मुनिर भ्रमरवद आहारती इति भ्रमराहार इत्यपि परिभाष्यते। उस वृत्ति को भ्रमराहार वृत्ति भी कहते हैं, भ्रामरी वृत्ति। जैसे भ्रमर फूलों का रस लेता है ना, तो फिर फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसके शरीर पर कांटे भी होते हैं लेकिन फूलों की पंखुड़ियों में वो कांटों से छेद नहीं करता, वो चुप एकदम सिर्फ रस लेकर के उड़ जाता है वहां से आगे। बस उसी प्रकार साधु भी गृहस्थ के घर जाते हैं और फिर वहां से आहार लेकर, वहां कोई तकलीफ पहुंचाए बिना चुपचाप आहार लेकर चले जाते हैं। यथा केनचित प्रकारेण शुभ्र पूर्ण वत उदरगर्तम अनगार पूरयति स्वाधुनेतरेण वयति शुभ्र पूर्णमिति च निरुच्यते। फिर बोलते हैं कि घर में अगर कहीं टाइल्स के बीच में कोई गड्ढा जैसा हो जाता है, तो फिर उसको रेत से, सीमेंट से या किसी भी चीज से भर दिया जाता है। उसी प्रकार साधु भी जब ये पेट रूपी गड्ढा खाली हो जाता है, तो उसको सरस नीरस आहार से भर करके पैक करके आ जाते हैं वापस। पैक करने का मतलब गलत अर्थ मत लेना, जितना अनुमति है उतने ही लेकर के आ जाते हैं, गड्ढा भर के आ जाते हैं। इस तरह ये कहलाती है भिक्षा शुद्धि। तो ये आचौर्य व्रत के लिए आवश्यक है। फिर सधर्मा विसंवाद, सधर्मा जनों के साथ अविसंवाद, मेरा तेरा नहीं करना। नहीं तो कभी क्या होता है कि कोई चीज आपको अच्छी लगी कोई दूसरे साधु की, तो फिर वो साधु मतलब विवाद चालू कर दे कि नहीं ये तो मेरी वस्तु है, वो तो मेरी तेरी वाली बात आएगी तो फिर चोरी का दोष लग जाएगा। इसलिए ये इन छोटी छोटी चीजों में नहीं पड़ना है। फिर ब्रह्मचर्य की पांच भावनाएं, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वव्रतानुस्मरण विशिष्ट रसस्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथाओं को सुनने का त्याग करना है। ऐसी कथाएं ऐसी चर्चाएं नहीं सुनना है जिससे स्त्रियों में राग की उत्पत्ति हो। तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, ये त्याग को सबके साथ जुड़ना है। उनके सुंदर अंग का निरीक्षण, उसको देखने का त्याग करना है। फिर पूर्व रतानुस्मरण त्याग, पूर्व काल में जो इंद्रिय सुख प्राप्त किए थे उसके बार बार स्मरण करने का त्याग करना है। फिर वृषेष्ठ रस त्याग, वृष यानी जो उत्तेजक भोजन होता है जो इंद्रियों को भड़काता है, एक प्रकार से नशा लाता है शरीर में, बाजीकरण वाला जो भोजन होता है, जो काम पुरुषार्थ करने वाले जिस भोजन का सेवन करते हैं, उसका सेवन ब्रह्मचर्य धारण करने वालों को नहीं करना है। जैसे नीति वाक्यामृत में लिखा है उड़द की दाल की खीर, संतान चाहने वाले उसका सेवन करते हैं उड़द की दाल की खीर, तो उसका सेवन यहां पर व्रतियों को नहीं करना है। ऐसी और भी कोई भी वस्तु जो संतान की इच्छा रखने वाले लोग ग्रहण करते हैं वो ब्रह्मचारी ग्रहण न करें। और इष्ट रस का अर्थ होता है कि जो चीज अपने को खूब पसंद आती है उसका त्याग करना है ब्रह्मचारी के लिए। जो अपने को सबसे ज्यादा पसंद हो उसका त्याग करना होगा हर ब्रह्मचारी को। क्योंकि उसके अधीन होने से जिह्वा इंद्रिय वश में नहीं होगी। जिह्वा इंद्रिय वश में नहीं होगी तो फिर स्पर्शन इंद्रिय वश में नहीं होगी, और ये दोनों इंद्रियां कामेंद्रिय कहलाती है, और कामेंद्रियां अगर वश में नहीं है तो ब्रह्मचर्य नहीं निभेगा। और स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर की सजावट का त्याग करना। एक सामान्य सजावट अलग बात है, पर जो एक स्पेशल सजावट होती है जिससे सारी दुनिया आकर्षित होने लग जाती है, तो वो अट्रैक्टिव बनने वाली जो सजावट है, दूसरों के लिए जो सजावट होती है, वो त्यागनी है। फिर परिग्रह त्याग व्रत का संरक्षण करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए पांच भावना, मनोज्ञा मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। स्पर्शन इंद्रिय के मनोज्ञ विषय में राग, अमनोज्ञ विषय में द्वेष। रसना इंद्रिय के मनोज्ञ विषय में राग, अमनोज्ञ में द्वेष। घ्राण इंद्रिय के मनोज्ञ विषय में राग और अमनोज्ञ में द्वेष। चक्षुर इंद्रिय के मनोज्ञ विषय में राग और अमनोज्ञ में द्वेष। और श्रवण इंद्रिय के कर्ण इंद्रिय के मनोज्ञ विषय में राग और अमनोज्ञ विषय में द्वेष। इनका त्याग करने से अपरिग्रह महाव्रत सुरक्षित रहता है। तो जो इष्ट विषय आपको आकर्षित कर लेगा तो फिर उसको आप छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे तो वो आपका परिग्रह बन जाएगा। अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा के लिए ये राग द्वेष ही छोड़ दो, ठीक है, पुद्गल की पर्याय है वो। अब मेरे को अपने राग संस्कार के कारण अच्छी लग रही है, अब किसी को खराब भी लग सकती है, वो अपने अपने संस्कारों की बात है। तंबाकू इंसान को खूब अच्छा लगता है जो खाते हैं उनको, लेकिन गधा जो होता है वो उसके पत्तों को सूंघता भी नहीं है। अहमदाबाद के पास तंबाकू के खेत हैं गुजरात में, यहाँ पर भी है बेलगांव वगैरह के पास, तो गधा दूर रहता है उससे। तो वो जिसको मनोज्ञ है उसके लिए मनोज्ञ है, किसी और के लिए अमनोज्ञ है। वस्तु अपने आप में मनोज्ञ अमनोज्ञ नहीं है। तो फिर ये भी व्रति को ध्यान में रखना। और क्या भावना कर सकते हैं व्रतों की निर्मलता के लिए, तो आचार्य कहते हैं व्रतों की दृढ़ता के लिए और भी भावनाएं। हिंसा दिश्व्या मुत्रा पाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिखों में अगर विचार करके देखा जाए तो इह और अमूत्र, इस भाव में और अमूत्र यानी पर भाव में, अपाय अवध्य दर्शनम, अपाय यानी नुकसान और अवध्य यानी दोष, इन्हीं का दर्शन मिलेगा आपको। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में, इस भाव में और उस भाव में आपको दो ही चीजें मिलेंगी, नुकसान और दोष, नुकसान और दोष, नुकसान और दोष, और कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसा बार बार विचार करने से या फिर ऐसा अपने आप को ढाल लेने से फिर इसमें प्रवृत्ति रुक जाती है। और दुःखमेव वा, अथवा ये तो इस भव और पर भव की तो बात छोड़ो, इसी समय हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये साक्षात दुख है। भले सुख की कल्पना कर ले कोई, लेकिन वो सुख नहीं है बल्कि दुख ही है, ये स्वयं दुख रूप है। और कौन सी भावना कर सकते हैं व्रतीजन? मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानिच सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु। मैत्री भाव सत्व यानी सब जीवों में, प्रमोद भाव गुणाधिक जनों में, जो गुणों में अधिक है उनके प्रति प्रमोद भाव, कारुण्य भाव क्लिश्यमान के प्रति पीड़ित जनों के लिए, और मध्यस्थ भाव अविनेय के प्रति। अविनेय का अर्थ होता है बिल्कुल विपरीत वृत्ति वाले, उल्टा चलने वाले। अपन हाँ बोलेंगे तो वो ना बोलेंगे, अपन पूरब बोलेंगे तो वो पश्चिम बोलेंगे, अपन धर्म बोलेंगे तो वो अधर्म बोलेंगे। ऐसे लोगों के प्रति मध्यस्थ भाव में एकदम तटस्थ रहना, जैसे कि अपन बहरे हो, सुना ही नहीं हो कुछ, ऐसा भाव रखना उसके प्रति। क्योंकि उसको तो अपना काम करना ही है, अपन अपने काम में लगे रहो। तत्वार्थ श्रवण ग्रहण अभ्यास संपादित गुणा, असंपादित गुणा अविनेय। जो तत्वार्थों के श्रवण ग्रहण और अभ्यास से इकट्ठा होने वाले गुणों से रहित हैं वो अविनेय कहलाते हैं, उनके प्रति तटस्थ रहना। दुर्जनेन समम शाठ्यम प्रीतिं चापिन कारयेत उष्णो दहति चांगार शीत कृष्णाय ते करम। बोलते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ दुष्टता का बर्ताव भी मत करना और लगाव भी मत रखना, प्रीति भी नहीं, प्रेम का बर्ताव भी नहीं करना। क्यों? तो बोले कि कोयला जब गर्म होता है तो हाथ जलाता है, ठंडा होता है तो काला कर देता है। तो प्रीति करोगे तो तुम्हें वो दोष आ जाएंगे तुम्हारे अंदर, काले हो जाओगे तुम भी, और अगर दुष्टता करोगे दुर्जन के प्रति तो फिर हाथ जल जाएंगे तुम्हारे, वो तुम्हारी हालत खराब कर देगा वो। और क्या भावना है? जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। संवेग भावना के लिए संसार से कभी कभी डर नहीं लगता, कभी कभी लगता है कि संसार थोड़ा सुरक्षित लग रहा है अभी तो, जब तक पुण्य अपने साथ है तब तक बढ़िया चल रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, जगत का स्वभाव सोचो क्या है, तीनों लोक का विचार करो, नीचे क्या है, मध्य में क्या है, ऊपर क्या है। तो जैसे विचार करते हैं तो फिर लगता है कि सुरक्षित तो नहीं है, क्या पता नेक्स्ट एड्रेस कौन सा है। तो इसलिए संवेग होता है। और काय स्वभाव, शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से वैराग्य होता है। कैसे शरीर में अपन रह रहे हैं, ये आत्मा सिद्ध स्वरूप है, सोचने की बात है। समाधि मरणोत्साह दीपक में एक श्लोक आता है, शपक से कहते हैं कि हे भव्य जीव, तुम संलेखना में तत्पर हो, तुम अपने पुरुषार्थ को और बढ़ा दो। देखो आत्मा सिद्ध स्वरूप ही है और संसारी जीव ने उस आत्मा को देह में कैद करके रखा है, और देह एक ऐसा पिंजरा है जो अत्यंत मलिन है। ये शरीर ऐसा है, उसमें श्लोक लिखा कि हे भव्य जीव, इस शरीर को रोज रोज भर भर करके खाली करने में तुझे अच्छा लग रहा है? तू करता क्या है इस शरीर को लेकर, रोज इसको भरता है और खाली करता है? तो आत्मकल्याण कर, शरीर के बंधन से मुक्त हो। तो शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से वैराग्य होता है। अब पांच जो अविरतियां थी उनको बतलाते हैं। प्रमत्त योगात प्राणव्यपरूपणम हिंसा। प्रमत्त योग से प्राणों का जो व्यपरोपण वियोग करण है वो हिंसा है। प्रमत्त योग का अर्थ होता है कषाय योग। प्रमत्त योग का अर्थ होता है रागादिकों की तीव्रता। प्रमत्त योग का अर्थ होता है क्रोधादिक का आवेश। आवेश पूर्वक अपने या किसी अन्य के प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है। असद विधान मनरतम, और आवेश पूर्वक असत्य कथन करना अनृत यानी असत्य नाम का पाप है। अदत्तादानम स्तयम प्रमत योगात सब जगह चलेगा, कषाय के आवेश के साथ बिना दी हुई वस्तु का आदान चोरी है। मैथुन ब्रह्म कषाय पूर्वक स्त्री पुंसयोः परस्पर गात्रोपश्लेषी राग परिणामो मैथुन। एक विशिष्ट प्रकार का राग होता है जो स्त्री पुरुष के बीच में होता है, उससे होने वाली जो प्रवृत्ति है वो अब्रह्म है, और वो कभी कभी एकांत में भी होती है तो उसका भी यहां त्याग करने से ब्रह्मचर्य व्रत होता है, ये अब्रह्म पाप ही कहलाता है। मूर्छा परिग्रह, फिर मूर्छा जो है वो परिग्रह, मूर्छा क्या वस्तु है तो जो आचार्य महाराज परिभाषा दे रहे हैं उस पर ध्यान देना। बाह्याभ्यंतरोपधि संरक्षणादि व्यापृतिर मूर्छा, बाह्य और अंतरंग के जो परिग्रह हैं उनके प्रति संरक्षण आदि की जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम मूर्छा है। रागादीनाम उपधीनाम रागादिक परिग्रहों के लिए संरक्षण अर्जन संस्कार आदि लक्षण व्यापृति मूर्छा, उनकी सजावट अधिक है लक्षण जिसका, ऐसी प्रवृत्ति का नाम मूर्छा है, मूर्छा परिग्रह। निःशल्यो व्रती, व्रती जो होता है शल्यों से रहित होता है। तीन तरह की शल्य होती हैं, शल्य यानी कांटा कीला जो चुभता है उसको शल्य बोलते हैं, नुकीली वस्तु होती है पॉइंटेड वो शल्य है। तो व्रती जो होता है वो शल्य रहित होता है। कौन से शल्य है? माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। और व्रति के दो भेद हैं, अगार्य अनगारश, अगारी अनुव्रति आगे बताएंगे, अगारी माने घर वाला, अनगार यानी घर रहित बेघर घर के त्यागी। अनियम प्रसंग इति चेत, बोले कि फिर इससे तो बात बनेगी नहीं, बोले आप अगर आप ये कहोगे कि घर वाले अगारी है और जो बेघर हैं वो अनगार हैं, तो फिर कई भिखारी भी अनगार हो जाएंगे जिनका घर नहीं है, कहीं भी फुटपाथ पर वो अपना गुजारा करते रहते हैं। तो आचार्य बोलते हैं कि ना भावागारस से विवक्षितत्वात्, यहाँ पर हमारे वक्तव्य का अभिप्राय ऐसा है कि जो भावात्मक कषाय रूपी घर है उससे जो रहित है वो अनगार है। बोले देखो श्यान मतम, आपका ये ख्याल हो सकता है कि शून्यागार देवकुलाद द्यावासस्य मुने ही अगारित्वं प्राप्तम, खाली घर में या फिर मंदिर में ठहरे हुए मुनि के अगारी पना हो गया, वो तो अगारी हो गया। अनिवृत्त विषय तृष्णस्य कुतश्चित कारणात् विमुच्यागार वने वसत अनगारत्वं चेत्यनियम प्रसंग इति। और फिर जिसने विषय कषायों का त्याग नहीं किया है लेकिन किसी कारण से वो कहीं बाहर भटक रहा है, उसका घर नहीं है, वन में वो ठहरा हुआ है, तो वो अनगार हो गया। आचार्य बोलते हैं कि तन्ना वो बात नहीं है, किम कारणम, क्या कारण? भावागार से विवक्षितत्वात्, यहाँ पर भावागार जो है वो हमारे वचनों का अभिप्राय है। चारित्र मोहोदये सति, कषायों का उदय होने पर अगार संबंधम प्रत्यनिवृत्त परिणाम, घर के संबंध के प्रति त्याग रूप भाव न होना अगारम इत्युच्यते, उसका नाम अगार है। सयस्यास्त्यसौ वने वसन्नपि अगारीति व्यपदेशम अर्हति, और वो भाव जिसके पास है, घर के त्याग का भाव जिसके अंदर नहीं है, तो ऐसा अत्याग भाव जिसके अंदर है वो अगारी है। तदभावाद अनगार इति च भावित भवति, और उसका अभाव हो जाने से अनगार होते हैं। तो ये अनगार भाव जो है, ये जैसे रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी अनगार की बात चल रही थी रात में, जब स्वाध्याय था, प्रादोशिक स्वाध्याय में ये विषय आया था, अपसून आरंभाणाम आर्याणाम इष्यति दानम अनगाराणाम, क्या लिखा था, गृह विमुक्तानाम, गृह विमुक्त शब्द था वहां पर। तो वो अनगार है, यानी कोई मेरा घर है ऐसा भाव ही नहीं है उनको, वो अनगार है। अणुव्रतो उगारी, फिर अगारी कौन है, अणुव्रती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अनगार है वो अणुव्रती नहीं है। तो अभी अपन इतना रखते हैं, इसके आगे का आगे देखेंगे। जय नम जय तुशासनम।